समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, आज सवेरे के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। समाचार प्रभात का एक ऐसा अंक जो कई रंगों से आपको दिन भर के लिए रंग देता है। देश दुनिया की खबरें, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और आज के दिन से जुड़े महान लोग। आज के इस अंक में सुभद्रा रामचंद्रन के साथ मैं हूं नवीन सक्सेना।
Good morning, Naveen. Happy Saturday to all you folks tuned into us on this channel, that is FM Gold, for a session of your favorite magazine show, Aaj Savere. So, Naveen, let's begin with some news headlines.
Okay, Subhadra, लेकिन इससे पहले हम अपने सुनने वालों को बता दें कि आज जब हम इतिहास के पन्नों को ढूंढेंगे ना, तो कुछ ऐसी शख्सियत की बात करेंगे जिसने दिन भर आपको कहीं ना कहीं बिजी रखने के लिए वो शख्सियत आपके पास रहेगी, और जब आप उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में ढूंढेंगे, तो कुछ ऐसी कविताएं, कुछ ऐसे शेर आपके जहन में गूंजते रहेंगे कि जब तक आप उनको या तो पूरा पढ़ना लें या जब तक आप उनको पूरा सुनना लें, आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। कहते हैं कि वो शायर कहता है कि जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। तो अगले आधे घंटे तक अगर इस शायरी को आप सुनना चाहते हैं तो आपको मुझे और सुभद्रा को तो सुनना ही पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले आपको बिहार लिए चलते हैं। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनावों से पहले प्रचार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और सिंथेटिक सामग्री के उपयोग को लेकर कड़े नियमों की रूपरेखा तैयार करते हुए एक नया परामर्श जारी किया है। आयोग ने राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और अभियान प्रतिनिधियों से कहा है कि वो प्रचार के इस्तेमाल या प्रसारित किसी भी कृत्रिम रूप से उत्पन्न या AI परिवर्तित छवि, ऑडियो या वीडियो को AI जनरेटेड डिजिटल रूप से संवर्धित या सिंथेटिक सामग्री के रूप में लेबल करें जो दृश्य प्रदर्शन क्षेत्र में कम से कम 10% को जरूर कवर करे।
The Election Commission has issued directions to the chief electoral officers of the states and UTs to ensure that every polling station is equipped with assured minimum facilities and voter assistance during poll day. Assembly election is scheduled in Bihar on the 6th and 11th of next month, and by-elections in 7 states will be held on 11th of November. Assured minimum facilities include drinking water, waiting shed, toilet with water facility, adequate lighting, a ramp of proper gradient for PWD electors, a standard voting compartment and proper signage.
सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS और एकीकृत पेंशन योजना UPS के अंतर्गत लाइफ साइकिल LC75 और बैलेंस्ड लाइफ साइकिल BLC जैसे निवेश विकल्पों के विस्तार को मंजूरी दे दी है। ये कदम उन कर्मचारियों को लंबे समय से चली आ रही मांग के अनुरूप है जो चाहते थे कि उन्हें किसी भी निजी क्षेत्र की तरह निवेश के अधिक लचीले विकल्प मिले। इन विकल्पों का उद्देश्य रिटायरमेंट प्लानिंग में लचीलापन बढ़ाना और कर्मचारियों को अपने निवेश को अपनी पसंद या जोखिम क्षमता के अनुसार प्रतिबंधित करने की आजादी देना है।
इन बिहार द 4-day फेस्टिवल ऑफ फेथ छठ महापर्व विल बिगिन टुडे विद द रिचुअल नहाय खाय। The festival is dedicated to the sun god, which symbolizes the worship of nature and cleanliness. With a pledge to observe the sacred fast on first day, devotees, vratis, take a holy bath and eat a simple meal of arwa rice and bottle good curry after offering the prayers. On the second day of the festival, Karna ritual will be performed. The devotees begin a 36-hour long fast without water after consuming the sacred Karna prasad. On Monday, offerings, argya, will be made to the setting sun at Chhat Ghats located on various river or water bodies. Then on Tuesday, devotees will offer argya to the rising sun, marking the conclusion of the 4-day long Chhat festival. Markets have become lively in preparation for the festival. There is heavy rush of people buying fruits, earthen pots and other items used in Chhat puja. Migrant people of Bihar from different parts of the country are coming home to take part in the Chhath Puja celebrations.
रेलवे त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए 900 से ज्यादा विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है. दीपावली और छठ पर्व मनाकर लौटने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए 6000 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां अधिसूचित की गई हैं. छठ उत्सव के दौरान सुचारू संचालन बनाए रखने के लिए बिहार से लगभग 30 स्टेशनों पर अतिरिक्त टिकट काउंटर, सीसीटीवी निगरानी और यात्री अनुकूल व्यवस्था भी की गई है.
The GST Bachat Utsav kicked off on 22nd September as the Narendra Modi government slashed GST rates in many sectors, benefiting citizens across the country. Today, our correspondent brings a report on how the new GST rates in the housing sector are helping citizens.
The next generation GST reforms have provided a major boost to the housing and construction sector by making essential materials more affordable. The GST rate on marble and granite blocks has been reduced from 12% to 5%, lowering the finishing and flooring costs. Similarly, the tax rate on cement has been cut from 28% to 18%, reducing overall construction cost. Furthermore, GST on sand lime bricks have also been slashed to 5% from the previous 12% tax. Talking to the media, Jasmant Vidya, the chairman of an apex body representing private real estate developers, said that the GST cuts are benefiting the real estate sector by reducing the cost of building materials.
Government has reduced the rate of cutting in GST. It has reduced the rate of cements, granite, stone, brick, stone in many things. Accordingly, it has benefited a lot in our real estate and the benefit that we will give to our end users, the people who own affordable houses, will benefit a lot.
These reforms are not only making housing and infrastructure development more affordable, but also promoting sustainable practices in the construction sector. With Samarth, Saklain Akhtar, Akashwan News, Delhi.
और अब बात खेलों की दुनिया की. सबसे पहले क्रिकेट. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मैच आज सिडनी में खेला जाएगा. मैच सुबह 9 बजे शुरू होगा. श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया 2-0 की बढ़त बनाए हुए है.
Hosts India won 4 medals, including 3 gold, on the opening day of the 4th South Asian Athletics Federation, SAF, Senior Athletics Championships in Ranchi yesterday. The games got off to a spectacular start at the Birsa Munda's football stadium in Murabadi. In the men's 5,000-meter race, India's Prince Kumar clocked 14:22.17 seconds to bag the first gold medal of the championship. The women's 5,000-meter race, Sanjana Singh clinched the gold medal, followed by the compatriot Seema, who took silver, marking a 1-2 finish for India in the event. In men's shot put, Samardeep Singh Gill, the flag bearer of Team India during the opening ceremony, delivered a throw of 19.59 meters to win the gold medal.
आज सवेरे में अब वक्त हो चला है आपके शहर की खबरें जानने का. चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद की खबरों के साथ सुभद्रा, और फिर वह वापस लौट सकते हैं मेरे पास दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के लिए.
यस नवीन, स्टार्टिंग विद न्यूज फ्रॉम चेन्नई, द लॉन्ग अवेटेड फोर्थ रेलवे ट्रैक बिटवीन ताम्बरम एंड चेंगलपट्टू स्टेशंस हैज बीन अप्रूव्ड बाय द रेलवे मिनिस्ट्री. द 30.02 किलोमीटर रेलवे लाइन विल बी एग्जीक्यूटेड एट अ कॉस्ट ऑफ रूपीज 757.18 करोड़ विद अ 3-year डेडलाइन फॉर कम्प्लीशन इंक्लूडिंग लैंड एक्विजिशन. द फोर्थ लाइन विल अलाउ मोर एक्सप्रेस ट्रेन्स टू सदर्न डेस्टिनेशंस व्हाइल सबर्बन ट्रेन ऑपरेशंस विल रिमेन अनअफेक्टेड ऑन डेडिकेटेड ट्रैक्स. द प्रपोजल सबमिटेड इन नवंबर लास्ट ईयर हैज बीन अप्रूव्ड. लैंड एक्विजिशन इज एस्टिमेटेड टू कॉस्ट रूपीज 311 करोड़. द प्रोजेक्ट विल इंक्लूड द कवर्ड सिस्टम एंड 225 kV इलेक्ट्रिफिकेशन. We have another news from Chennai. The Indian Institute of Management, Tiruchirappalli, has announced the opening of admissions for the 15th batch of its postgraduate program in business management offered at the Institute's Chennai campus. The PGPBM is a 21-month MBA program designed for working professionals, enabling them to enhance their managerial and leadership capabilities without taking a career break. I beg your pardon. The program combines academic rigor with practical learning through case discussions, simulations, peer interaction, and a capstone industry project. Applications are open to professionals with a bachelor degree and a minimum of 3 years of full-time work experience. Professionals from diverse sectors, including corporate, public sector, and entrepreneurial backgrounds, are encouraged to apply. Reservation norms of Government of India are applicable for the program. Let's go to Bangalore now. The Bengaluru Division of Indian Railways has expanded Namma Nakshe QR-based station navigation application to 14 stations under its jurisdiction. This will enhance passenger convenience and digital accessibility. This web-based application provides real-time station-specific navigation through an interactive assistance to create a digital map on the user's mobile by scanning a QR code displayed at the respective station premises. The passengers can instantly view 2D layouts of the station, including the direction to different platforms, exits, foot overbridges, subways, waiting halls, restrooms, lifts, escalators, ramps, drinking water points, and catering stalls. The interface offers image-based guidance and route options, helping travelers to choose the most convenient paths and navigate easily between concourse and platforms. The ramps and lifts are clearly marked in the map that is user-friendly even for senior citizens. The passengers with heavy luggage and families with children will find it convenient to navigate towards necessary assistance. Hyderabad News now. In Telangana, the MLA defection case has entered its final phase, with Assembly Speaker G. Prasad Kumar resuming hearings under the Anti-Defection Act. Proceedings are expected to conclude next week after questioning six more BRS MLAs, following which the Speaker will deliver his ruling on the disqualification petitions. A total of 10 BRS legislators defected to the ruling Congress over the last year and a half. Acting on disqualification petitions filed by BRS, the Supreme Court had directed the Speaker to inquire within 3 months, with the deadline expiring on October 31. Notices were served to all 10 MLAs, of whom 8 have submitted written replies and affidavits. D. Naginder and K. Srihari sought more time to respond. While the Speaker granted an extension, no deadline was specified. And Naveen, let's go over to the other cities.
सुभद्रा, सबसे पहले दिल्ली का रुख करते हैं. बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली में अब वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मंगलवार से बृहस्पतिवार के बीच क्लाउड सीडिंग के जरिए पहली बार कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि कृत्रिम वर्षा कराने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए विमान, मौसम विभाग और पर्यावरण निगरानी तक सभी प्रणालियां तैयार हैं. छठ को लेकर दिल्ली पूरी तरह से तैयार हो चुकी है. उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल ने छठ पर्व के अवसर पर दिल्ली से 28 स्पेशल रेलगाड़ियां चलाई हैं, और ये प्रयास छठ श्रद्धालुओं को सुरक्षित और आरामदायक तरीके से उनके घरों तक पहुंचाने पर केंद्रित है. दिल्ली के जितने भी प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं, वहां पर उद्घोषणा प्रणालियों के माध्यम से पारंपरिक भोजपुरी छठ गीत बजाए जा रहे हैं. वहीं छठ महापर्व के अवसर पर दिल्ली के महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने कल यमुना नदी स्थित सूरघाट और शनिघाट का दौरा कर तैयारियों का निरीक्षण लिया. महापौर ने बताया कि निगम द्वारा छठ पूजा के सफल और सुव्यवस्थित आयोजन के लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. उधर राष्ट्रीय राजधानी परिवहन निगम NRCTC को आनंद विहार नमो भारत स्टेशन के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल यानी IGBC द्वारा प्लैटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया है. प्लैटिनम रेटिंग IGBC ग्रीन सर्टिफिकेशन के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सर्वोच्च रेटिंग है. सुनते हैं एक रिपोर्ट.
यह उपलब्धि नमो भारत परियोजना में पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को अपनाने के लिए NCRTC द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयासों को दर्शाती है. NCRTC ने सभी प्रमुख संस्थानों, जिनमें डिपो, स्टेशन, रिसीविंग सब स्टेशन और अन्य इमारतें शामिल है, इन परियोजना का मूल्यांकन 6 श्रेणियों में किया गया है. परियोजना की अवधारणा से लेकर कार्यान्वयन तक प्रत्येक चरण में सतत विकास को शामिल किया गया है. इसके लिए NCRTC ने कई हरित प्रथाओं को अपनाया है, जिसमें कम कार्बन उत्सर्जित करने वाली निर्माण विधियों तथा ऊर्जा कुशल प्रणालियों का प्रयोग, स्टेशनों का प्राकृतिक वेंटिलेशन के अनुरूप डिजाइन, वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित करना शामिल है. इन सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के चलते आनंद विहार स्टेशन को यह उपलब्धि हासिल हुई है. आदित्य प्रताप सिंह, दिल्ली.
दिल्ली के बाद अब आपको मुंबई लिए चलते हैं। VPPL ने कल संयुक्त रूप से GP रेटिंग प्री सी ट्रेनिंग कोर्स आयोजित करने के लिए ACI मैरिटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस सहयोग का उद्देश्य VPPL द्वारा समर्थित उम्मीदवारों को आवश्यक समुद्री कौशल और ज्ञान से तैयार करना है ताकि वो समुद्र में करियर के लिए तैयार हो सके। उधर मुंबई मेट्रो लाइन 7 जिसे रेड लाइन भी कहा जाता है और 2A जिसे येलो लाइन कहा जाता है अलग होने वाली है क्योंकि शहर का विस्तारित मेट्रो नेटवर्क अपने विकास के अगले चरण की तैयारी कर रहा है। नई योजना के अंतर्गत कुंडावली से चलने वाली रेलगाड़ियां उत्तर दिशा में मीरा रोड जाएंगी जबकि अंधेरी पश्चिम से DN नगर से शुरू होने वाली सेवाएं दहिसर पूर्व में एक सामान्य टिकट वाले इंटरचेंज स्टेशन पर समाप्त होंगी। बात कोलकाता की, पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत राज्य सचिवालय नवन्ना में राज्य के अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हाल ही में पश्चिम बंगाल के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले और उससे जुड़े मामलों में वृद्धि हुई है और इन्हीं के मद्देनजर ये बैठक बुलाई गई है। अब पलटते हैं आज सवेरे का एक और पन्ना और रुख करते हैं आपके शहर के मौसम का।
चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद मॉडरेट रेन। Minimum temperature was 24 degrees Celsius, maximum will be around 29. Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with moderate rain. The minimum temperature was 21 degrees Celsius, maximum will be around 26. Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with light rain or drizzle. The temperature will hover between a minimum of 22 degrees Celsius, maximum of 30 degrees Celsius.
दिल्ली में आज भी धुंध रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है यानी कल से 1 डिग्री और कम ठंड की दस्तक हो चुकी है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री रहेगा। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम 31 डिग्री और वहीं कोलकाता में मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और अब आज सवेरे का वो पन्ना जिसका आपको रहता है इंतजार, तो जानते हैं क्या है आज का इतिहास।
यस, 1891, रियली लॉन्ग टाइम अगो, कैनेडियन अमेरिकन फिजिकल एजुकेटर जेम्स नेस्मिथ इन्वेंटेड द गेम ऑफ बास्केटबॉल ऑन दिस डे। सो टुडे दिस स्पोर्ट्स ऑफ कोर्स इज प्लेड एंड एंजॉयड बाय मिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड।
सुभद्रा, हमारा देश दुनिया का सबसे विशाल लोकतांत्रिक राष्ट्र है और लोकतंत्र में चुनाव के महत्व से हम सब परिचित हैं। आज ही के दिन सन 1951 को देश में पहले लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया जो थी वो शुरू हुई थी जो 21 फरवरी 1952 तक संपन्न हुई। इस चुनाव में 17 करोड़ से अधिक भारतीय मतदाताओं ने हिस्सा लिया और उन्होंने अंग्रेजों के इस अनुमान को बिल्कुल गलत साबित कर दिया कि भारतीय समाज लोकतंत्र का दायित्व नहीं निभा सकता।
1932, Peerless Investment Company was established. 1944, during the Battle of Leyte Gulf, Japanese deploy kamikaze, that's divine wind, bombers against American warships for the first time. And 1962, Uganda officially became a member of the United Nations.
1870 में वो आज ही का दिन था जब अमेरिका में पहली बार पोस्टकार्ड का उपयोग किया गया था। 1960 में न्यूयॉर्क में पहली इलेक्ट्रॉनिक कलाई घड़ी जो थी वो बाजार में आई थी और भारत ने अपना पहला स्वदेशी टैंक विकसित किया था। इस टैंक को नाम दिया गया था विजयंत, आज ही के दिन सन 1964 में।
एंड 2001, माइक्रोसॉफ्ट रिलीज्ड विंडोज XP व्हिच बिकम्स वन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट्स मोस्ट सक्सेसफुल ऑपरेटिंग सिस्टम्स ड्यू टू इट्स स्पीड परफॉर्मेंस एंड न्यू फीचर्स।
तो ये थी वो घटनाएं जो जुड़ी हुई थी आज के दिन से और
yes.
अब उन महान विभूतियों को, उन महान व्यक्तित्वों को याद करते हैं जो आज के दिन से जुड़े हुए हैं।
Yes, today is International Artist Day, dedicated to celebrating the contributions of artists to society. So this came about, friends, in history, marking the birth of artist Pablo Picasso in 1881, sculptor, painter, printmaker, stage designer. Of course, Picasso was a Cubist art movement's co-founder. This movement set the pace for abstract art and created surrealism and neoclassicism artwork styles. Although Picasso was born in Spain, he spent his artistic career and life in France. He produced approximately 1,47,800 art pieces, including illustrations, engravings, prints, paintings, ceramics and sculptures.
आज का दिन जुड़ा हुआ है लॉर्ड मैकॉले से। आज ही के दिन 1800 में उनका जन्म हुआ था। प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि, निबंधकार, इतिहासकार और राजनीतिज्ञ। खास बात ये कि भारतीय दंड विधान से संबंधित द इंडियन पेनल कोड की लगभग सभी पांडुलिपियां इन्होंने ही तैयार की थी। अंग्रेजी भाषा को भारत की सरकारी भाषा और शिक्षा का माध्यम और यूरोपीय साहित्य, दर्शन और विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने का जो हाथ था वो इन्हीं का था, नाम लॉर्ड मैकॉले।
द फ्रेंच रोमांटिक कंपोजर पियानिस्ट चाइल्ड प्रोडिजी जॉर्ज विजे टुक बर्थ दिस डे, बोर्न दिस डे पेरिस ऑन 25th अक्टूबर 1838। फादर वाज अ सिंगिंग टीचर, मदर वाज एन अकॉम्प्लिश्ड पियानिस्ट हु गेव जॉर्जस हिज फर्स्ट लेसन। The Paris Conservatoire was so impressed by the boy's abilities that it waived its age rule and offered him a place when he turned just 9 years old. And shortly after his 17th birthday, Bizet wrote his own symphony and of course is best known for the world's favorite opera, Carmen. Then you're just listening to it, the instrumental version of Carmen.
आज जन्मदिन है प्रसिद्ध लेखिका मृदुला गर्ग का। हिंदी की सबसे लोकप्रिय लेखिकाओं में से एक रखी हैं। मृदुला जी ने यूं तो एमए अर्थशास्त्र में किया था, पर उनका मन रमा हिंदी साहित्य में। कथानक की विविधता और विषयों के नएपन ने उन्हें अलग पहचान दी। साहित्यिक रचनाओं के लिए उन्हें व्यास सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्यकार सम्मान और साहित्य भूषण सम्मान से नवाजा गया है। बात 1937 की। हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका रही शारदा की। शारदा राजन आयंगर ये उनका पूरा नाम है। सन 1960 और 1970 के बीच उन्होंने कुछ बेहतरीन गीत गाए। शारदा को फिल्म सूरज से एक गीत था उसके लिए पहचान मिली और उस गीत को बचपन से लेकर आज तक हम सब गुनगुनाते आए हैं। नाम है तितली उड़ी उड़ के चली।
Phil Lesh, the bass player in the Grateful Dead for their entire run, that is from 1965 till 1995, died this day at 84. His bass was often a lead instrument in the band, creating a distinctive sound that meshed with Jerry Garcia's guitar work. Here goes. The cats that you meet on the streets speak of true love. Most of the time they're sitting and crying at home. One of these days they know they gotta get going. Out of the door and down to the street all alone. Chugging like the doodah man once told. And friends, Midori, Japanese-American violinist, celebrates her birthday today. This child prodigy made her solo debut at age 11. Yes, friends, in the year 1982, conductor Zubin Mehta invited the young Midori to perform with the New York Philharmonic Orchestra in annual New Year's Eve concert, where the foundation was laid for her subsequent career. Now, Midori has established a record of achievement, which sets her apart as a master musician, an innovator, a champion of the developmental potential of children. In 1992, Midori founded Midori and Friends, a non-profit organization that brings music education programs to thousands of underprivileged children each year. As a messenger of peace, Midori continues to inspire young people through music education to build a sense of community and learn from each other.
आज पुण्यतिथि है जसपाल भट्टी की। प्रसिद्ध हास्य अभिनेता दूरदर्शन पर आए। उनके धारावाहिक उल्टा पुल्टा और फ्लॉप शो को हम कभी नहीं भूल सकते हैं। टेलीविजन में अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करने से पहले वो चंडीगढ़ से प्रकाशित द ट्रिब्यून में कार्टूनिस्ट थे और व्यंग को उन्होंने एक अलग ही पहचान दी है। सुनते हैं एक छोटा सा पीस फ्लॉप शो से।
ये लीजिए आपके 500 रुपए
की जरा चेंज दे देंगे।
चेंज तो है नहीं जी।
है नहीं का क्या मतलब?
मतलब क्या है नहीं, मतलब है नहीं
भाई, मुझे बहुत जरूरी चाहिए, क्या बात कर रहे हैं आप?
अगर आपको बहुत जरूरी चाहिए तो बाहर एक भिखारी बैठे हैं गेट पे, आप उनसे मांग लें।
ये क्या, 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 क्या मजाक कर रहे हैं आप?
मजाक क्या, भिखारी से ले लें, इसमें क्या है, चेंज चाहिए ना, मिल जाएगी।
देखिए मैं आपकी शिकायत करूंगा, आपने इतना बड़ा बैंक खोल रखा और 100 रुपए की चेंज के लिए आप मुझे बाहर भिखारी के पास भेज रहे हैं? आपके मैनेजर साहब कहाँ हैं?
अभी बाहर चेंज इकट्ठी करने के लिए मैनेजर साहब ही तो भिखारी के कपड़े पहनकर बैठे हैं।
And friends, today is the birthday of American pop singer Catherine Hudson, better known as Katy Perry. She was born in Santa Barbara, California. And also German musician and songwriter Matthias Jabs was born in Hanover, West Germany. This lead rhythm guitar player of the German rock band Scorpion joined the band as a replacement of the original guitarist. So with his induction, they achieved an even more solid sound. His creativity, virtuosity, enthusiasm continue to make a decisive contribution to the band's success. He owns a music store, MJ Guitars in Munich. A peace song friend, this is called White Dove, with Jabs playing the guitar, and while singer Klaus Main delivers those beautiful lines.
And while the sun goes down, the world goes by. White Dove, fly with the wind, take our hope under your wings, for the world to know that hope will not die where the children cry.
और अब बात उस शायर की, उस गीतकार की जिसकी आज पुण्यतिथि है और जिसकी कलम ने जब भी लिखा वो गीत, वो गजल, वो शेर अमर हो गया।
Yes, Naveen, poetry and poets are, you know, they're loved all over the world, right? And we all love beautifully composed verses, be it sad or happy. So right now we are going to talk about a very popular poet who's the pride of progressive poetry. Yes, Abdul Fazal Muhammad is known to the world as, you know, Naveen.
उन्हें कहा जाता है साहिर लुधियानवी। लुधियाना के रहने वाले थे, इसलिए उन्होंने अपना तखल्लुस लुधियानवी रख लिया, और साहिर जिसका अर्थ है भोर या फिर उजाला। कहते हैं कि उनका पूरा जीवन ही अपने आप में एक उपन्यास था। अमृता प्रीतम से नाकाम इश्क, फिर अपने आप को एक गीतकार साबित करने के लिए मुंबई में जद्दोजहद। कॉलेज से निकाले जाने के बाद साहिर ने अपनी पहली किताब पर काम शुरू किया, नाम था तलखियां, और फिर गीतकार के रूप में उनकी जो पहली फिल्म आई थी वो थी बाजी। साहिर ने समाज की सच्चाई पर बहुत कुछ बयां किया है। वो कहते हैं कि जिंदगी सिर्फ मोहब्बत ही नहीं, कुछ और भी है। भूख और प्यास की मारी इस दुनिया में इश्क ही एक हकीकत है, ये कुछ और भी है। इन सब के बीच संघर्ष के लिए प्रेरित करता उनका गीत है कि जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है। अपना हक संगदिल जमाने से छीन पाओ तो कोई बात बने। लेकिन हम आपको सुनवा रहे हैं साहिर की कलम का वो गीत जो बहुत ही खूबसूरत है, चेहरे पे खुशी छा जाती है, आंखों में सुरूर आ जाता है। साहिर की लोकप्रियता काफी थी। वो अपने गीत के लिए लता मंगेशकर से मिलने वाले पारिश्रमिक से 1 रुपया अधिक लेते थे, और कहते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो पर होने वाली घोषणाओं में गीतकारों का नाम भी नहीं लिया जाता था, लेकिन साहिर ने इसकी मांग की और इसे पूरा किया। एक और खूबसूरत गीत है जिसमें साहिर ने कहा है कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया।
फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
उम्मीद है आपको आज का ये कार्यक्रम बहुत 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 पसंद आया होगा। अब मैं और सुभद्रा अब आपको साहिर के लिखे एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ छोड़े जा रहे हैं, तुम अगर साथ देने का वादा करो।
साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं, तुम मुझे देखकर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देखकर गीत गाता रहूं, तुम अगर।
आज के संक में बस इतना ही।
Stay tuned, friends, for coming up now is Samachar Prabhat, the Hindi News Bulletin, followed by Morning News in English at 8:15. Thanks for tuning in, friends. Have a great day. Namaskar.